डैनियल की पुस्तक क्रमांक 191। दानियल 51 का भविष्य सूचक ताना बाना, ट्रंप के युग की जटिलताओं का अनावरण और रविवार कानून की भूमिका।
यदि ठीक से समझा जाए तो दानियल अध्याय 11 के पद 10 से 23 तक उसी अध्याय के पद 40 के छिपे हुए इतिहास के साथ मेल खाते हैं। पद 40 में 1989 से लेकर पद 41 तक का इतिहास समाहित है। अध्याय 11 के पद 1 और 2 1989 से आरंभ होते हैं और वे 2015 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए पहले अभियान की पहचान करते हैं, जो 2020 तक चलता है, जब नास्तिकता के पशु द्वारा ट्रंप से चुनाव चुरा लिया गया। वे दोनों पद उस संघर्ष की पहचान करते हैं जो तब आरंभ होता है जब ट्रंप यूनान के समस्त राज्य को उकसाता है।
ट्रंप के अभियान ने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जो उनके पूरे पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जारी रहा। प्रतिनिधि सभा ने दिसंबर 2019 में उनके खिलाफ महाभियोग जलाया, फिर 13 जनवरी 2020 को भी ऐसा ही किया। दोनों मामलों में सीनेट ने प्रतिनिधि सभा के प्रयासों को खारिज कर दिया। इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में दो बार महाभियोग झेलने वाले वे एकमात्र राष्ट्रपति हैं। वैश्विकतावाद भड़क उठा था।
और अब मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। देखो, फारस में और तीन राजा उठ खड़े होंगे और चौथा उन सब से बहुत अधिक धनी होगा, और अपनी धन संपत्ति के बल से वो सबको यूनान के राज्य के विरुद्ध उकसाएगा। दानियल 11:2।
जैसे पद 40 में है, वैसे ही पद 2 भी ट्रंप के पहले चुनाव अभियान और राष्ट्रपति कार्यकाल का एक छिपा हुआ इतिहास छोड़ देता है, जो 20 जनवरी 2021 को समाप्त हुआ। 2021 के उसी दिन से लेकर पद 3 तक, जब सिकंदर महान को संयुक्त राष्ट्र बाइबल की भविष्यवाणी का सातवां राज्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, 2021 के शपथ ग्रहण से लेकर रविवार के कानून तक, जहां त्रिगठबंधन स्थापित होता है, का इतिहास एक छिपे हुए इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। पद 40 और पद 2 के ये छिपे हुए इतिहास दोनों रविवार के कानून तक ले जाते हैं और उसी पर आकर समाप्त होते हैं।
पद 10 हमें, ठीक पद 1 की तरह, 1989 के अंत के समय पर फिर से ले आता है, और दोनों ही पद 40 की वास्तविक गवाही के निष्कर्ष की पहचान करते हैं। हालांकि पद 40 में वर्णित उस निष्कर्ष और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के बीच अब भी इतिहास बाकी है। 1989 की पहचान भर नहीं, पद 10 उस कुंजी के रूप में उभरता है जो पद 40 के इतिहास के तीन साक्षियों को एकजुट करता है। ये साक्षी 1989 में सोवियत संघ का सफाया करने में पापाई सत्ता और उसकी प्रतिनिधि शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्य का पूरक है। ये तीनों साक्षी 1989 से अलेकर रविवार के कानून तक पद 40 की भविष्य सूचक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व स्थापित करते हैं।
उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बीच युद्ध की ऐतिहासिक भविष्यवाणी की संरचना, जिसमें उत्तर का राजा उमड़ कर आगे बढ़ता और पार कर जाता है, पद 40 में और पद 10 में भी पहचानी जाती है। ऐतिहासिक भविष्य सूचक संरचना को उस व्याकरणिक साक्ष्य से भी बल मिलता है कि उमड़ना और पार जाना, जो उत्तर के राजा द्वारा दक्षिण के राजा के विरुद्ध है, दोनों पदों में एक ही हिब्रू वाक्यांश है, और ऐसा ही तीसरे साक्ष्य में भी है, जो यशाया अध्याय 8 पद 8 में मिलता है। 10वें पद में उत्तर का राजा निश्चय ही आएगा और बाढ़ लाएगा और पार होकर जाएगा, और 40वें पद में उत्तर का राजा बाढ़ लाएगा और पार कर जाएगा। यशाया अध्याय 8 पद 8 में उत्तर का राजा बाढ़ लाएगा और पार हो जाएगा। ये तीनों अभिव्यक्तियां एक ही इब्रानी वाक्य हैं, जिनका अनुवाद अर्थ समान रखते हुए थोड़ा अलग ढंग से किया गया है। 10वें पद में दक्षिण का राजा प्रोटोलमी का मिस्र था, पर 40वें पद में दक्षिण का राजा आध्यात्मिक म्यार था, अर्थात नास्तिकता का राजा सोवियत संघ, और यशाया में यहूदा का दक्षिणी राज्य दक्षिण का राजा था। क्रमशः उत्तर का राजा सेल्यूसिड साम्राज्य था, फिर पापसी, और यशायाह में वो अश्शूर था।
तीन समानांतर पदों में से दो में वो बिंदु जहां उत्तर के राजा के आक्रमण का अंत होता है, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
दसवें पद में ये दुर्ग पर समाप्त होता है, जिसकी ऐतिहासिक पूर्ति तब हुई जब सेल्यूसिडों ने अपना अभियान मिस्र की सीमा पर समाप्त किया, क्योंकि भविष्यवाणी के वचन ने यह बताया कि उत्तर का राजा निश्चित रूप से आएगा और बाढ़ की तरह उमड़ेगा और पार होकर निकल जाएगा। तब वो लौटेगा और उत्तेजित होगा, यहां तक कि अपने दुर्ग तक। दुर्ग मिस्र का प्रतिनिधित्व करता था, जो उनके राज्य की राजधानी था। यशायाह अध्याय 8 में सनाचरिब यहूदा से होकर गुजरेगा, वह उमड़कर पार जाएगा, वह यहां तक कि गर्दन तक पहुंच जाएगा। राजधानी, राजा और सिर, ये सभी एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले प्रतीक हैं, जिन्हें उसी अंश में जहां सनाचरिब यरूशलेम पर चढ़ाया था, दो गवाहों की गवाही पर स्थापित किया गया है।
क्योंकि सीरिया का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रसीन है, और 65 वर्षों के भीतर एप्रैम ऐसा तोड़ दिया जाएगा कि वो प्रजा न रहेगा, और एप्रैम का सिर सामरिया है और सामरिया का सिर रमलिया का पुत्र है। यदि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय तुम स्थिर न ठहरोगे। यशाया 7:8-9।
सीरिया राष्ट्र है, दमिश्क राजधानी नगर है, और रेजिन राजा है, और राजधानी और राजा परस्पर विनिमेय प्रतीक है। राजधानी और राजा दोनों सिर हैं। जब सन्हेरीब यहूदा की गर्दन तक आया तो वो यरूशलेम तक आया और रुक गया, क्योंकि वो सिर पर रुक गया जिसे गर्दन सहारा देती है। जब सेल्यूकिड प्टोलेमी के विरुद्ध आए तो वे दुर्ग पर रुक गए, और वो दुर्ग मिस्र राष्ट्र था। दानियेल 11:10 और यशाया 8:8, यशाया 7:8-9 के संदर्भ में दो ऐसे साक्षियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने ये पहचान किया कि जब दानियेल 11:40 में उत्तर का राजा 1989 में दक्षिण के राजा पर उमड़ पड़ा और आगे बढ़ गया, तब सिर अर्थात वो राष्ट्र जो दक्षिणी राज्य की राजधानी था रूस खड़ा रह गया। दसवें पद का किला वर्तमान यूक्रेन युद्ध की पहचान करने की कुंजी है, और यह तथ्य भी कि रूस विजयी होगा। फिर भी वो भविष्यवाणी संबंधी अनुप्रयोग जो इस सत्य को स्थापित करता है सीधे उन्हीं पदों से जुड़ा है और उन्हीं पर पूर्णतः आधारित है, जिन्हें हिराम एडसन के लिए उद्घाटित किया गया था और जिनका प्रकाशन 1856 में रिव्यू एन हेराल्ड के लेखों में हुआ था। वे लेख लैव व्यवस्था 6 में 7 काल की पहचान करते हैं। जुलाई 2023 से यहूदा के गोत्र के सिंह ने उन्हीं पदों से प्रकट किया है कि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध दी गई दोनों ही 2520 वर्षीय भविष्यद्वाणियां केवल तितर बितर किए जाने की अवधि का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वे मसीह के उस कार्य को भी चित्रित करती है जिसके द्वारा दिव्यता का मानवता के साथ संयोग संपन्न होता है। उस प्रकाशन में ये पहचाना गया है कि सिर मनुष्य की उच्चतर प्रकृति है, सिर मानवीय मंदिर में गढ़ है जिसे सिस्टर भाइट आत्मा के दुर्ग के रूप में पहचानती है। दुर्ग एक गढ़ होता है, अतः ये स्थापित होता है कि दानियेल अध्याय 11:10 का बाहरी दुर्ग एक आंतरिक दुर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता है। 2014 में जब यूक्रेन में युद्ध बाहरी शुरू हुआ तो डाउन अंडर और वेल्स से आई शैतानी शिक्षाओं, आंतरिक की घुसपैठ, फ्यूचर फॉर अमेरिका के आंदोलन में कराई गई और मुहरबंदी की प्रक्रिया एक और चरण तक पहुंच गई थी। 2020 तक उस महान नगर की सड़कों पर जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, रिपब्लिकन और प्रोटेस्टेंट दोनों सींगों का वध कर दिया गया था। 2021 में डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति चुनाव अभियान में असफल रहे और 10 कुवारियों की प्रतीक्षा का समय आ पहुंचा था। 2022 में ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अपना तीसरा राष्ट्रपति चुनाव अभियान शुरू किया और उनका पहला सफल राष्ट्रपति चुनाव अभियान उनके अंतिम अभियान का प्रतिनिधित्व करता है। 2023 में जंगल से आती आवाज मृत सूखी हड्डियों से बोलने लगी। 13-15 तक के पद्य पुतिन द्वारा छेड़े गए यूक्रेन युद्ध के बाद के इतिहास का वर्णन करते हैं। हालांकि विजय उसे लाभ नहीं देगी, क्योंकि रूस नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास को दोहराता है। नेपोलियन का निर्वासन और अंत राजा उज्जिया के निर्वासन और अंत द्वारा प्रतिरूपित था, वो भी अपनी सैन्य विजयों से सुदृढ़ नहीं हुआ और वो 11 और 12 पदों के प्टोलेमी चतुर्थ का पूर्वरूप ठहरा। दोनों ही अपनी सैन्य विजयों से सुदृढ़ नहीं हुए। उज्जिया और प्टोलेमी चतुर्थ दोनों ने मंदिर में भेंट चढ़ाने का प्रयास किया और दोनों को ऐसा करने से रोका गया। ऐसा करने का प्रयास करते ही राजा उज्जिया के माथे पर कोर लग गया। उसके माथे का निशान केवल पशु के चिन्ह का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि उसने 1999 में दक्षिण के पहले राजा का भी प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जो भी एक प्रकार के निर्वासन में चला गया जब वो गोर्बाचेव संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए सोवियत संघ से निकल गया। राजा उज्जिया की ही भांति गोर्बाचेव के माथे पर भी एक उल्लेखनीय निशान था। राजा उज्जिया, राजा प्टोलेमी चतुर्थ, नेपोलियन और गोर्बाचेव सभी पुतिन के अंत का प्रतिरूप हैं। ये चारों दक्षिण के राजा थे जिन्होंने अपने अपने विशिष्ट राजवंध का अंत किया और इस प्रकार पुतिन के रूस के अंत का प्रतिरूप बने।
तब 13वें से 15वें पद उस गवाही का उद्घाटन करते हैं जो 200 ईसा पूर्व आरंभ हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप के तीसरे और अंतिम कार्यकाल को प्रतीकित करते हैं जो रिपब्लिकन सिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। 14वां पद उस समय को चिह्नित करता है जब पोपतंत्र टैर की वेश्या के रूप में अपने व्यभिचार के गीत गाना शुरू करता है और 15वां पद धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट सिंह की रेखा को मक्काबियों के इतिहास से जोड़ता है। ये तीन पद तीन भविष्य सूचक रेखाएं समेटे हुए हैं।
मक्काबियों का इतिहास वैसा छिपा नहीं है जैसा पद 2 के अंत से पद 3 तक या पद 40 के अंत से पद 41 तक की बातें छिपी है, परंतु इसकी विषय रेखा कम से कम प्रथम दृष्टि में अस्पष्ट रहती है। फिर भी उस कुछ धुंधले भविष्यवाणी संबंधी इतिहास में यहूदियों का रोम से गठबंधन प्रस्तुत किया गया है और वही पशु की प्रतिमा के गठन की पहचान कराता है। पशु की प्रतिमा का गठन दानियेल अध्याय 2 के छिपे इतिहास में भी प्रतीकित है, जहां नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा जिसे वो स्मरण नहीं कर पाया और जहां दानियेल को मृत्यु के भय के अधीन स्वयं स्वप्न जाने बिना ही उसका अर्थ बताना आवश्यक था। अध्याय 2 में दानियेल और तीन वीरों की प्रार्थना बाहरी प्रकाश के लिए की गई प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करती है, जो दानियेल अध्याय 9 की आंतरिक परिवर्तन के लिए की गई प्रार्थना की पूरक है। मक्काबियों की काल रेखा दानियेल के दूसरे अध्याय के छिपे रहस्य के साथ मेल खाती है। दानियेल के दूसरे अध्याय का रहस्य 7 में से 8वां नामक भविष्य सूचक पहेली की पहली भविष्य सूचक गवाही प्रदान करता है, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में वर्णित 2 गवाहों के पुनर्थान के रहस्योद्घाटन में योगदान देता है। 7 में से 8वां के संदर्भ में 2 गवाहों का पुनर्थान ये स्थापित करता है कि मिलराइट्स और 144,000 के समानांतर इतिहास में मिलराइट्स का विपरीत संक्रमण लाओदीकिया की ओर 144,000 के लाओदीकिया से फिलाडेल्फिया की ओर संक्रमण के साथ मेल खाता है। मक्काबियों की वो अस्पष्ट पंक्ति और नबूकदनेस्सर का छिपा हुआ स्वप्न, इन दोनों को 2023 में 2 गवाहों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद तक विशेष रूप से मुहरबंद रखा गया था। महान भूकंप की घड़ी से ठीक पहले उनकी मुहर खोली जाती है जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों के लिए अनुग्रह काल की समाप्ति को चिन्हित करती है। वो परीक्षा जिसे वे एडवेंटिस्ट परमेश्वर की मुहर प्राप्त करने से पहले और अनुग्रह काल समाप्त होने से पहले उत्तीर्ण करनी है, पशु की प्रतिमा के निर्माण से संबंधित है। मक्काबियों की वंश रेखा, नबूकदनेस्सर का गुप्त स्वप्न, 7 में से 8वां होने का रहस्य और पृथ्वी के पशु के 2 सींग, ये सब उस परख की प्रक्रिया में योगदान देते हैं जो तब पूरी होती है जब पशु की प्रतिमा बनाई जाती है। इन बातों को ऐसे सत्यों के रूप में पहचानना जो किसी भविष्यवाणीमय अर्थ में छिपे हुए सत्य है, यही सिद्ध करता है कि ये वही सत्य है जिन्हें यहूदा के गोत्र का सिंह इस समय मुहरें खोलकर उजागर कर रहा है। 2 गवाहों की पहचान का उद्घाटन, जो प्रकाशित वाक्य 13 के पृथ्वी के पशु के रिपब्लिकन और प्रोटेस्टेंट सिंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस सत्य के साथ कि प्रत्येक सींग दूसरे के समांतर चलता है और ये भी कि प्रत्येक सींग का एक द्वि-आंतरिक स्वभाव है, यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य के उद्घाटन के आरंभ को चिन्हित करता है। ये उद्घाटित सत्य 7 गर्जनों के गुप्त इतिहास के उद्घाटन को भी सम्मिलित करता है और इब्रानी शब्द सत्य की परिभाषा को भी। जब 7 गर्जनों की अंतिम अवधि को पहली निराशा के 3 चिन्हों का प्रतिनिधित्व करने वाली माना गया, जिसके पश्चात मध्यरात्रि की पुकार का संदेश आया और फिर महान निराशा के साथ उसका समापन हुआ। तब इब्रानी शब्द सत्य के अनुरूप 18 जुलाई 2020 को चिह्नित करने वाला वो प्रकाशन स्थापित हुआ जो रविवार के कानून की ओर ले जाने वाले मध्यरात्रि की पुकार के संदेश की सिद्ध परिपूर्ति है।
सात गर्जनाओं की पहचान जुलाई 2023 से पहले प्रथम स्वर्गदूत के आंदोलन और तृतीय स्वर्गदूत के आंदोलन के समानांतर इतिहास के रूप में की जा चुकी थी, परंतु उस समय अंतिम त्रिचरणीय अवधि को उस विशिष्ट अवधि के रूप में नहीं माना गया था जिसका प्रतिनिधित्व सात गर्जनाओं के रूप में किया गया है। अब वो पहचान सत्य के रूप में स्थापित हो चुकी है।
यीशु मसीह का प्रकाश तवाक्य अनुग्रह अवधि के समाप्त होने से ठीक पहले उन्मुद्रित किया जाता है और इसमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के दो साक्षी सम्मिलित है। यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य में सात गर्जनों का गुप्त इतिहास सम्मिलित है। यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य में ये गूढ़ कथन भी सम्मिलित है कि आठवां उन सातों में से है जो आगे चलकर मलेरियों के लौदीकिया में संक्रमण की पहचान कराता है और इसके समांतर 144,000 का फिलाडेल्फिया में संक्रमण भी। आठवां उन सातों में से है ये भी पशु की मूरत की परीक्षा की एक भविष्यद्वाणीय अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि रिपब्लिकन और प्रोटेस्टेंट दोनों सींग अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जब रिपब्लिकन सींग पशु की एक राजनीतिक मूरत उत्पन्न करता है जो उसके विपरीत और उसके साथ विवाद में सच्चे प्रोटेस्टेंट सींग द्वारा मसीह की एक मूरत निर्मित करने के साथ खड़ी होती है और तब वे पताका के रूप में ऊंचा उठाए जाते हैं।
ये सत्य जुलाई 2023 के अंत में उजागर होने लगे और ये सभी सत्य उस भविष्य सूचक इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो छिपे हुए इतिहास में पूरा होता है, जो दानियल की भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। अतः हमारे पास आयत 40 के छिपे इतिहास की एक भविष्य सूचक संरचना है जो 1995 में अंत के समय से लेकर आयत 41 के रविवार के कानून तक जाती है, जिससे हम दानियल अध्याय 11 की आयत 1 और 2 को उसके ऊपर अध्यारोपित कर सकते हैं। तब हम उसी रेखा में आयत 10 से 15 तक को रख सकते हैं। फिर हम मक्काबियों की वो रेखा जो सही रूप से समझी जाए तो आयत 13 से शुरू होकर आयत 23 तक चलती है को भी उसी रेखा में ले सकते हैं। फिर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 की आयत 7 से 12 तक के दो गवाहों की रेखा को भी उसी रेखा में सम्मिलित कर सकते हैं। दानियल और प्रकाशित वाक्य दो गवाह के साथ हमारे पास आयत 40 के छिपे इतिहास की एक संरचना है। 1985 में पोपतंत्र और उसकी प्रतिनिधि सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के गठबंधन ने सोवियत संघ को उखाड़ फेंका। जब सोवियत संघ का गोरबाचेव द्वारा विघटन किया गया तब 144,000 के लिए अंतकाल आ गया। रोनाल्ड रीगन अंतकाल के समय से संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भविष्य सूचक राजा थे। रीगन, जो राजा दारियस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट रिपब्लिकन थे, उनके बाद कुरूश आया, फिर तीन अन्य राजा और फिर चौथा धनी राजा। राजा साइरस ने बुश प्रथम का प्रतिनिधित्व किया, एक घोषित रिपब्लिकन वैश्विकतावादी, जिनके बाद डेमोक्रेट वैश्विकतावादी क्लिंटन आए, जिनके बाद घोषित रिपब्लिकन वैश्विकतावादी बुश अंतिम आए, जिनके बाद इस्लामी डेमोक्रेट वैश्विकतावादी ओबामा आए, जिनके बाद उन सब में सबसे अमीर राष्ट्रपति एक धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप आए। इन तीनों सताफ में रूस और पोपतंत्र की नाजी प्रॉक्सी सेना के बीच यूक्रेनी युद्ध शुरू हुआ और पोपतंत्र की पूर्व प्रॉक्सी सेना संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेनी प्रॉक्सी सेना को समर्थन दे रही थी। 2014 में फ्यूचर फॉर अमेरिका आंदोलन में ड्रैगन के प्रतिनिधियों ने घुसपैठ की और 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीन राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियानों में से पहला शुरू किया। वो अपने पहले अभियान में विजयी रहा लेकिन उसका बीच वाला अभियान चुरा लिया गया और अपने अंतिम अभियान में वो फिर से विजयी होगा। 2020 में चुनाव चुरा लिया जाने के कारण रिपब्लिकन सिंह को घातक घाव लगा और सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह को एक झूठी भविष्यवाणी की घोषणा करने के कारण घातक घाव लगा। ये आंशिक रूप से 2014 में शुरू हुई घुसपैठ के जरिए
हुआ जिसने तरह तरह के झूठे भविष्य सूचक अनुप्रयोगों को प्रस्तुत करके संदेश को चुरा लिया।
जूथ इसमें एक निर्वाचन और एक भविष्यवाणी संबंधी संदेश चुरा लिए गए और दोनों सींगों को अजगर के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से मार डाला गया। निर्वाचन उस द्विस्तरीय गठबंधन द्वारा चुरा लिया गया जो स्वयं को रिपब्लिकन कहने वाले वैश्वीकरणवादियों और वैश्वीकरणवादी डेमोक्रेटों से बना था और जिसे वैश्वीकरणवादी प्रचार माध्यम तथा वैश्वीकरणवादी व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। संदेश एक छोटे कद की अविवाहित लड़की द्वारा जो डाउन अंडर से थी और वेल्स के एक छोटे कद के तलाकशुदा लड़के द्वारा चुरा लिया गया जिनका छिपा हुआ उद्देश्य समलैंगिक एजेंडा को प्रविष्ट कराना और बढ़ावा देना तथा पाप के मनुष्य से क्षमा मांगना था। फ्यूचर फॉर अमेरिका का नेता इस सतानी घुसपैठ के लिए समस्त दोष वहन करता है क्योंकि आंदोलन की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी की थी, परंतु वो अशुद्ध दूतों को नेतृत्व के पद पर आसीन होने देने के लिए अत्यंत तत्पर था। चुराए गए निर्वाचन के लिए डोनाल्ड ट्रंप दोषी है क्योंकि जिन्हें उसने अपने आंतरिक सत्ता चक्र के भीतर आने दिया वे जानबूझकर उस कार्य को कमजोर कर रहे थे जिसे उसने अपने हाथ में लिया था।
2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना तीसरा अभियान बिगिया और 2023 में जंगल में पुकारने वाला का शब्द कलीसियांस को एक संदेश भेजना अरब का गिल्डा। हाल ही में एक पत्थर जिसे मैं वर्तमान सत्र से बाहर रहने वालों के रूप में परिभाषित करता हूँ ने पुकार उठाए जो संभवतः सार्वजनिक क्षेत्र के वर्षों में वर्ष पेरे जिडीसेस बॉर्डनसेस कुरे गौजने के बहंगरों में से एक है और उसने कुछ अत्यंत सूक्ष्मदर्शी सत्यों को व्यक्त किया। उसका नाम डॉक्टर डेविस हैंसन है और यदि आप अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं का अनुसरण कर रहे हैं और उन घटनाओं की तुलना उसके वचन की भविष्यद्वाणियों के साथ कर रहे हैं तो विक्टर डेविस हैंसन उन पत्थरों में से एक है जो उसी संदेश को प्रतिध्वनित कर रहा है जिसका आप आशा है कि अध्ययन कर रहे हैं।
परमेश्वर चाहता है कि हम अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं का अध्ययन करें और उन्हें उसके वचन की भविष्यवाणियों से तुलना करें ताकि हम समझ सकें कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमें अपनी बाइबलें चाहिए और हम जानना चाहते हैं कि उसमें क्या लिखा है। भविष्यवाणी का परिश्रमी विद्यार्थी सत्य के स्पष्ट प्रकाशनों से पुरस्कृत होगा क्योंकि यीशु ने कहा, तेरा वचन सत्य है। साइंस ऑफ द टाइम्स 1 अक्टूबर 1894।
X.com पर एट फ्रीजाटार्ट द्वारा पोस्ट किए गए एक साक्षात्कार में हैंसन ने ये कहते हुए शुरुआत की, वे डेमोक्रेटिस ट्रंप को एक पिशाच के रूप में देखते हैं। आगे वे डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुनी जाने को लेकर डेमोक्रेटिस के बाय पर बात करती हैं। मुझे ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हैंसन ने ये समझा कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 के अनुसार ट्रंप एक पिशाच के रूप में पुनर्जीवित होते हैं और जब ऐसा होता है तो जो लोग पहले उसकी नूडियाए पुआ आनंदित हुए थे वे भयभीत हो जाते हैं। फिर भी अपनी पूरी टिप्पणी में वे इसी बात की ओर इशारा करते हैं
और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई और वे अपने पांवों पर खड़े हो गए और उन्हें देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य 11:11।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
हम उस काल तक पहुंच चुके हैं जिसकी भविष्यवाणी इन धर्म ग्रंथों में की गई थी। अंत का समय आ गया है, भविष्यवक्ताओं के दर्शन उद्घाटित हो चुके हैं और उनकी गंभीर चेतावनियां हमें ये संकेत देती हैं कि हमारे प्रभु का महिमामय आगमन अब निकट ही है। यहूदियों ने परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ लगाया और उसका गलत उपयोग किया और वे अपने कृपा दर्शन के समय को पहचान न सके। मसीह और उनके प्रेरितों की सेवकाई के वर्ष, चुने हुए लोगों के लिए अनुग्रह के वे बहुमूल्य अंतिम वर्ष, उन्होंने प्रभु के दूतों के विनाश की साजिशें रचने में बिता दिए। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें अपने में ग्रस्त कर लिया और आत्मिक राज्य का निमंत्रण उनके लिए निष्फल रहा। आज भी इसी प्रकार इस संसार का राज्य मनुष्यों के विचारों को ग्रस्त किए रहता है और वे तेजी से पूरी हो रही भविष्यवाणियों और परमेश्वर के शीघ्र आने वाले राज्य के चिन्हों पर ध्यान नहीं देते। परंतु हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की तरह आ पड़े। तुम सब ज्योति के पुत्र हो और दिन के पुत्र हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। यद्यपि हमें अपने प्रभु की वापसी की घड़ी जानना नहीं दिया गया है, हम जान सकते हैं कि वो निकट है। इसलिए हम औरों के समान न सोएं, परंतु जागते और संयमी रहें। 1 थिसलुनीकियों 5:5-10। युगों की अभिलाषा। 10 सप्ती चीज़।